Thank you. Bye. ಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪ್ರಿ ಬ್ರಜಗಚಾರ್ಯ ಸ್ತದರ್ಶತ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಾಂಗ್ರಿ ಶ್ಲಭೈ ಚರಣಾರ್ವಿಂದ ಭಕ್ತಿದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ ವೃಂದ ಕೀ ನಮಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಕೀ ಪ್ರೇಮ್ ಸಿಗೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ್ ಶಿವಸಾದಿ ಗೌರ್ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಕೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಶ್ಯಾಮ ಕುಂಡ ರಾಧಾ ಕುಂಡ ಗಿರಿ ಗೋವರ್ಧನ್ ಕೀ ಬ್ರಜಮಿ ವೃಂದಾವನ್ ಧಾಮ ಕೀ ಜಯ ನವದೀಪ್ ಮಹಾಪುರ ಧಾಮ ಕೀ ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರಿ ಧಾಮ ಕೀ ಜಯ ಗಂಗಾ ಮಾಯಿ ಕೀ ಜಯ ಜಮುನಾ ಮಾಯಿ ಕೀ ಜಯ ಭಕ್ತಿ ದೇವಿ ಕೀ ಜಯ ತುಳಸಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಕೀ ಜಯ ಸಮಾವೇತ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಕೀ ಜಯ ಗೌರ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಓ ಗ್ಲೋರಿಷ್ಠ ಸಮೃದ್ಧಿ ಗೋರಿ ಓ ಗ್ಲೋರಿಷ್ಠ ಸಮೃದ್ಧಿ ಗೋರಿ ಓ ಗ್ಲೋರಿಷ್ಠ ಸಮೃದ್ಧಿ ಗೋರಿಷ್ಠ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರು ಏನು ಶ್ರೀ ಗುರಾಂಗ
ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ
ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂಜನ ಶಲಾಖಯಾ ಚಕ್ಷುರ್ಮಿಲಿತಂಜೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಜೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಃ ಶ್ರೀಚ್ಯುತಾಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರುನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಗಣಾ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಾಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ್ ಸಗಣಾ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೋ ದೀನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ಶ್ರೀರಾಧಾಕಾಂತ ನಮಸ್ತುತೆ ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನೋ ಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಶ್ರೀಹರಿಪ್ರಿಯೇ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ್ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಯಾ ವಿಷ್ಣು ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಹೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಎನಕ್ಕೆ ಪುರುಷೋಮೆ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಶಬ್ದ ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೇ ಜೋ ಜೀವ अपने आनंद की मनोवृत्ति को संतोष देना चाहता है उसे पुरुष कहते हैं। लेकिन ये पुरुष जो जीव है तो पुरुष प्रकृति स्थोपी भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सद सद्यो निजन्मशु ये भौतिक प्रकृति जो त्रिगुणात्मक है उनके गुणों को ये भोगना चाहता है आनंद लेना चाहता है ये भोग भूमि नहीं है। मनुष्य यहां जन्म लेकर सिर्फ भोग वृत्ति के लिए जो जीतना चाहता है तो वो भी एक प्रकार की पुरुष बुद्धि है, लेकिन वो भोगी नहीं बन सकता। जो भोगी है तो योगी बन सकता है नहीं, बल्कि रोगी बनता है। यानी कि भोग करने की इच्छा है, पुरुष बुद्धि है, फिर भी जबरदस्ती से रोग ग्रहण करना पड़ता है। ये पुरुष बुद्धि कुछ हृदय में मलिनता के कारण पैदा होती है, हृदय में मलिनता, मलिन यानी गंदगी, जो आत्मा का स्वभाव नहीं है। भगवान भोगी है, वो कभी रोगी नहीं होते, क्योंकि सारी सृष्टि के मालिक है, यानी कि जो जो सारी चीजें हैं उनके लिए है, जिनकी है उनकी, तो उसका उपयोग करने में उसको कोई रोक टोक नहीं है। हमें तो उधार लेनी पड़ती है, इसीलिए रोक टोक पड़ती है। उधारी उपरांत ज्यादा लें, कर्जा करें तो रोगी बनते हैं, ऋणी बनते हैं। हम उपभोक्ता हो सकते हैं, भोक्ता नहीं बन सकते। भोक्ता भगवान होते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांति मृच्छति। हमें शांति पाने के लिए तीन चीज जानने की आवश्यकता है। भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो सारी यज्ञ क्रिया विधि जो कुछ शक्ति द्वारा होता है वो भगवान की शक्ति द्वारा होता है, यानी कि ये शक्ति का फल भगवान को जाना चाहिए, क्योंकि वो भोक्ता जिसकी शक्ति है उसके मार्फत जो कुछ पैदा हुआ है वो भगवान का होता है। हम कैसे दावादारी कर सकते हैं इसमें? तो भगवान कहते कि मैं ही भोक्ता, मेरे अलावा कोई भोक्ता नहीं। यज्ञ तपसाम, यज्ञ विधि तप करना और कोई भी क्रिया मुफ्त में होती ही नहीं, लेकिन भगवान मालिक है, उसके लिए कोई कर्जा चुकाना नहीं होता है, उसकी है संपत्ति, इसलिए भोक्ता वो कहलाते हैं। हम यदि भगवान के संबंध में कुछ प्राप्त करके उनका उपकार समझ करके थोड़ा उसे उधार लेते हैं अपने निभाव के लिए, तो उपभोक्ता कहलाते हैं। उप यानी दूसरे नंबर का, पहले नंबर का भोक्ता भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वलोक महेश्वरम, सारे 14 भुवन के नाथ वो है, महेश्वर पूर्ण नियामक है, सारी सृष्टि इसके निगरानी से चलती है। भगवान के कानूनों का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, जो इनसे ईर्ष्यालु है वो हमेशा उल्लंघन करना ही चाहते हैं और उल्लंघन करके आते हैं, इसीलिए ईर्ष्यालुओं को दुख होता है, दुख पड़ता है। यानी कि भगवान से ईर्ष्या छोड़कर इनको हमारे हितेच्छु मानना, वेलविशर मानना, क्योंकि हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में सुरद के रूप में बैठे हैं। सुरद, रद यानी हृदय, हृदय में हमारे वेलविशिंग फ्रेंड की तरफ बैठे हैं। तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम, ये तीन चीज जानो। भगवान भोक्ता है, भगवान सर्वलोक के मालिक है और हर एक के हृदय में वो बैठे हैं साक्षी रूप और हमें छूट देते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि तेरे सुख दुख में मैं भाग नहीं लूंगा, फरियाद मत कर, तो तेरे कर्म के हिसाब से तुझे सब कुछ चुकाना पड़ेगा। तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम, इतना तीन चीज जो जानता है तो शांति पाएगा, न तो शांति का दूसरा कोई उपाय नहीं। हम चाहते हैं शांति, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता, क्योंकि समय के प्रवाह में सब कुछ ऐसा चलता है कि हम थोड़ा हासिल करते तो समय चला जाता है। एक पल भी बीती हुई हम लाखों डॉलर खर्च करके भी वापस नहीं ले सकते। जैसे सुदर्शन चक्र सारे काल का नियामक है, सारी सृष्टि उस चक्र की गति में ही सब घूमती फिरती रहती है। भगवान इसलिए जब संहार करने आते हैं तो कालो अहम अस्मि करके उपस्थित होते हैं। ये काल की गिनती कब से शुरू हुई है पता है? सूर्य भगवान उगते हैं और दिन बाद में ढलते हैं तो काल की गति यस चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त मूर्ति शशेष तेजः यस्याज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम जानामि। भगवान स्वयं ये काल की गति है, यानी कि ये संसार काल की गति में घूमता फिरता रहता है, अपने स्वच्छंद यानी कि स्वतंत्रता से वो घूमता फिरता नहीं है। कहने का मतलब है कि काल किसी का बनता नहीं, सबको उसके चक्कर में घूमना पड़ता है, लेकिन भगवान का स्वयं का जो स्थान है गोलोक वृंदावन वैकुंठ, वहां काल की गति नहीं होती। काल की गति यहां ये सृष्टि में है, जो सृजन हुआ है थोड़ी देर टिकती है बाद में चली जाती है, ये काल की चक्र में है। तो हम सूर्य उगते ही हम गिनती करने बैठ जाते हैं, अपना समय देखते क्या टाइम हुआ, महाराज जी जरा जल्दी करिए, बहुत लंबा लेक्चर मत देना, काल चल रहा है। लेकिन काल किसी का बनता ही नहीं, कोई अपने हाथ में नहीं रख सकता, इसीलिए काल का सदुपयोग भगवान की प्रीति प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ कि ये सूर्य की गति और चंद्र की गति में काल बेचारा स्वयं फंस जाता है। जब भगवान का प्रतिनिधि है वह स्वयं फंस जाता है। अपना जो वैदिक कैलेंडर है वह चंद्र की गति से चलता है और सूर्य की गति से दूसरा कैलेंडर चलता है। तो चंद्र छोटा होने के कारण थोड़े चक्कर और काटता है, सूर्य बड़ा होने के कारण उसको कम चक्कर काटने पड़ते हैं। तो ये सूर्य और चंद्र की गति में जो गिनती होती है तो इसमें चंद्र की गति ज्यादा होने के कारण उसके महीने में ज्यादा पड़ जाते हैं। तो करीबन 3.5 साल में एक महीना बढ़ जाता है, एक महीना बढ़ जाता है, यानी कि ज्यादा हर एक साल में हम 12 महीना का एक साल समझते हैं, लेकिन यहां एक महीना ज्यादा 3.5 महीने के बाद पहुंचता है। तो ये महीने को कहां कोई स्थान दे, हाँ? तो स्कंद पुराण में ये जो एक ज्यादा महीना है उसे अधिक मास कहते हैं। ये अधिक मास का कोई आश्रय नहीं, हरेक मास को अपने अपने देवताओं का आश्रय होता है, इष्ट देव का आश्रय होता है। वैष्णव कैलेंडर में 12 महीने भगवान के नाम पर पड़ते हैं, जो भगवान के काल की गिनती के अनुसार भगवान का समय और वो समय में हमें जो जो हासिल करना है वो भगवान की प्रीति प्राप्त करने के लिए करना होता है। तो काल यानी कि ये हरेक महीने के नाम भगवान के नाम पर पड़ते हैं। तो हुआ क्या, स्कंद पुराण में ये कथा आती है कि 3.5 साल में 1 महीना ज्यादा हो रहा और कोई उसको न तो देवता का आश्रय है न किसी का आश्रय है। स्मार्ट लोग देवताओं के नाम पर महीने बनाते हैं, ऋतुओं के अनुसार महीने बनाते हैं, लेकिन वैष्णव काल का मूल भगवान उसके नाम पर गिनती करते हैं। तो ये बेचारे का कोई आश्रय नहीं था और कोई देवता भी नहीं था। लोग उसे इनऑस्पिशियस अपशुकन वाला महीना मानते थे। वो परेशान होने लगा, अरे के भगवान का प्रतिनिधि मैं भी हूं, भगवान के अलावा मेरा कोई आश्रय नहीं है तो मैं स्वयं क्यों न जाऊं। तो ये अधिक मास भगवान के पास शरणागत होने के लिए आता है कि ये महीना में हमें तिरस्कार मिल रहा है, लेकिन हमें आना ही पड़ता है 3.5 साल में 1 बार, क्योंकि ये तो सूर्य चंद्र की गति में फर्क है। इसीलिए हम क्या करें, हमारा दोष क्या है। तब भगवान ने सोचा सही बात है, ऐसे कर, चलो मैं ही तेरा आश्रय स्थान बन जाता हूं, मैं ही तेरा देवता बनता हूं। और ये जो जूठी रसम इत्यादि हैं, इनको नष्ट करने के लिए तेरी महत्ता बढ़ाता। तो जो भौतिकवादी है, जो सिर्फ क्रियाकांड के लिए ये महीना अनुकूल नहीं मानते, भौतिकवादी यानी कि भौतिक फल की इच्छा के लिए जो जी रहे हैं, तो शास्त्र के अनुसार भौतिक कामनाओं की तृप्ति के लिए ये महीना दूषित है, ये महीना दूषित है। तो कोई भी ऐसा भौतिक काम इस महीने में नहीं होना चाहिए कि जो हमें कोई फल प्राप्ति नहीं कराता। इसीलिए इसकी मूल समस्या का निदान भगवान ने स्वयं कहा, अरे भौतिक अवस्था तो कायम की होती ही नहीं, इसके लिए चिंता क्यों करा। मूर्ख मनुष्य अपने आप को भौतिक शरीर वाले मानते हैं, लेकिन ये शरीर तो काम चलाव है। आत्मा अमर होती है, तो चल तेरी महत्ता आत्मा के संबंध में और मेरे संबंध में स्थापित करता हूं। यानी कि अधिक मास, या भगवान ने कहा मैं ही तेरा देवता हूं, इसलिए वो अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाने जाते हैं। और इसमें भगवान ने कहा कि भक्ति इतनी तीव्र बनती है कि जो सारे कर्मकांड का भी त्याग करेगा, भगवान की विशुद्धि में बना रहेगा, भगवान का नाम जप की महिमा आगे बढ़ाएगा और स्वयं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जो जप करता रहेगा, मेरे गुणगान गाता रहेगा, तो अवश्य ये भौतिक लाभों से कई गुना शाश्वत लाभ वो मेरी प्रीति भगवत प्राप्ति वैकुंठ धाम पाने के लिए सक्षम बनेगा। जो कर्मकांड हमें सब भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, हम शरीर तो है ही नहीं। तो इस महीने में जो भक्ति के लिए सक्षम बनता है ज्यादा, तो अवश्य उसे इतना लाभ होता है। सिर्फ भक्ति कर सकते हैं, कोई धार्मिक क्रिया अनुष्ठान इत्यादि जो भक्ति नहीं है, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के मनोसंकल्प के लिए करता है, वो सफल होगी नहीं। इसीलिए लोग घबराते हैं, लेकिन भक्ति के लिए घबराना नहीं होता। भक्त लोग और जोर से बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। पुरुषोत्तम मास की ये महिमा है, भक्ति के कार्य अवश्य सफल होते हैं। एक महीने के लिए ही भक्ति करने को कहा नहीं है, भक्ति तो निरंतर गंगा के प्रवाह जैसी चलती ही रहती है, लेकिन पुरुषोत्तम महीने में अवश्य उसका फल अनेक गुना ज्यादा बन जाता है। तो हमें कंजूस नहीं रहना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति पर हम विरक्ति बता सकते हैं, चलो मारो गोली इंद्रिय तृप्ति करने जाएंगे तो ये सफल नहीं होगी, कर्मकांड है। देवताओं के पीछे मत पड़ो, भगवान के पीछे जो पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही इस महीने के मालिक बनकर बैठे हैं, तो उनकी प्रीति प्राप्त करने के लिए हमें अवश्य तैयार रहना चाहिए। 3.5 साल में एक बार आता है, तो इस महीने में जो भक्ति के संकल्प करता है भगवान की प्रीति के लिए, तो सफल होके ही रहती है। भगवत प्राप्ति का ये उत्तम उपाय है। ये भक्ति में जितनी श्रद्धा आई वो सारी श्रद्धा जिंदगी भर बनी रहती है, इसमें कभी कटौती नहीं आती। भक्ति का व्यवसाय ऐसा है कि जिसमें कोई घाटा होता ही नहीं। तो जो शरीर बंधन के लिए जो इनऑस्पिशियस है, यानी कि वो दूषित कहलाता है, कई लोग उसे मलमास भी कहते हैं, मल यानी गंदगी। लेकिन ये माया और माया के सारे काम गंदे ही होते हैं जो बंधन में डालते हैं, और मलमास में माया को निकालने के लिए फिर गंदगी निकालने का उपाय भगवान की भक्ति बताई गई है। अवश्य हमें इस काल के चक्कर में से छूटने का उपाय काल ही देता है। भगवान काल का स्वरूप है और ये उत्तम महीना चल रहा है, तो अवश्य आप सबसे विनती करते हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करके अपनी भक्ति तीव्र बनाए। तीव्रेण भक्ति योगे न यजत पुरुषम परम। श्रीमद भागवत में ये कहा है कि अकाम वा सर्व काम ही मोक्ष काम उदार दी तीव्रेण भक्ति योगे न यजत पुरुषम परम। परम पुरुष पुरुषोत्तम होते हैं, हम छोटे पुरुष हैं, हमारी कोई भक्ति अपने आप करनी नहीं चाहिए। कोई भौतिक लाभ के लिए कोई लीडर की भक्ति करता है वो भक्ति नहीं है, वो बनियागिरी है, व्यापार है। लेकिन भक्ति का व्यापार में तो प्रेम के अलावा कोई चीज की आपले होती नहीं। तो हमें भगवान की साथ का तो तादान्य, यानी कि हमारा मूल स्वरूप में जो भगवान की सेवा है वो स्थापित करने का ये उत्तम मौका है। आप सबसे हम विनंती करते हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र अपना कर आपका जीवन समृद्ध बनाइए। उसके लिए कोई कीमत चुकानी नहीं होती, सिर्फ दिल उदार रखना होता है भगवान के प्रति। नहीं तो हम भगवान के प्रति ही कंजूस रहकर हम कुछ नहीं प्राप्त करते, खाली हाथ आते हैं खाली हाथ जाते हैं। तो और कीर्तन करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम हरे हरे Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare. Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you. संतरणी उपनिषद में जो यजुर्वेद का भाग है उसमें निर्णय लेकर ब्रह्मा जी नारद मुनि को समझाते हुए कहते हैं कि सारे वेद में इस 16 शब्द वाला मंत्र कली के सारे कलमश यानी कि दुखों को नाश करने वाला है, इससे बराबरी करने वाला या उसे ऊपरी कोई उपाय नहीं। हम लोग कलयुग ये जो काल का चक्र है उसमें नाशपंथी युग है उसे कलयुग कहते हैं, तो उसमें से गुजर रहे हैं। तो यहां हम अच्छी भावना लेकर आते हैं लेकिन कितनी सफल होगी ये कुदरत कितनी सफल करेंगे, ये काल में कितनी सफल हो सकती है वो तो ऊपर वाला ही जाने। हमारे हाथ में प्रयत्न के अलावा और कुछ नहीं रखा। ये तो सत्ययुग में लोग निर्णय करते थे और प्रयत्न करते थे तो बहुत सारा फल भी प्राप्ति होती थी, हमें तो मेहनत करते करते कुछ नहीं मिलता और जमाना भी इतना विकृत हो जाता है कि इतनी कंपटीशन बढ़ जाती है। क्या क्या कलयुग के लक्षण में इतने दोष दिखाई देते हैं। तो श्रीमद् भागवत के अनुसार कहते हैं कि कलौ दोष निधे राजन अस्ति एको महद्गुण। सारा कलयुग दोष की निधि है, निधि यानी समुद्र है, लेकिन इसी समुद्र में ही एक बहुत सारा अच्छा गुण है। तो कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संकल्प रंजेत, भगवान श्री कृष्ण के नाम कीर्तन द्वारा ही मुक्ति पा सकती है। इस कलयुग में हमें न तो यज्ञ करना आता है, न तो दान करना आता है, न तो तप करना आता है। वो सत्य युग की बात, त्रेता युग की बात और द्वापर युग की बात में ये तीन चीज बताई जाती है। कलयुग में ये तीनों चीज एब्सेंट, न तो उसकी कोई और उसका कोई प्रमाण रखता है, न कोई अच्छी तरह से कर पाता है। यदि अपने पास सुविधा है तो ये करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामान्य जनता के लिए ये कोई उपाय सूचित है ही नहीं। सभी कलयुग के खप्पर में पड़े हैं। अभी पुरुषोत्तम महीना की जो हमने महात्म्य समझाया तो इसमें हरिनाम के अलावा दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं दिया गया। तो भगवान के नाम की महत्ता कितनी बड़ी होगी। यह महत्ता भगवान का नाम की सेवा द्वारा ही प्राप्त होती है। महत्ता प्राप्त करना है तो सेवा एक माध्यम बन जाता है। अरे नाम की सेवा कैसे करेंगे? भगवान की सेवा तो समझ में आती है कि वो पुरुष है और वो हम भी पुरुष हैं, तो पुरुष एक पुरुष दूसरे पुरुष की सेवा कर सकता है। लेकिन ये तो नाम कलिकालेर नाम रूपे कृष्णेर अवतार, भगवान श्री कृष्ण ने अपने नाम रूपी स्वरूप धारण किया है। जो व्यक्तित्व के रूप में भगवान थे वो मिलना बहुत दुष्कर हो गया कलयुग में, जब देवता भी यहां धरती पर विचरने के लिए नहीं आ सकते, इतने डरते हैं कलयुग से। भगवान कहते हैं कि जहां देवता न जाए तो अवश्य दोष तो होगी, लेकिन ये तो मेरे सारे जीव हैं, मेरे अंश पर मुझे कृपा करने का मेरी स्वतंत्रता है, तो मैं अपना नाम लेकर ही जाऊं और उसके माध्यम से उनका तारण करूं, क्योंकि ये सारी प्रजा न तो यज्ञ करके पवित्र हो सकती है, न तो दान करके पवित्र हो सकती है, न तो तप कर इनकी कोई इनका इरादा नहीं है। तो यज्ञ दान तप क्रिया न त्याज्यम इति, छोड़ने की आवश्यकता है, जो कर सकते हैं तो उसे करना चाहिए, नहीं कर सकते हैं तो मारो गोली, आवश्यक नहीं है, क्योंकि सारी यज्ञ दान तप क्रिया का जो फल है तो भगवान के नाम के रटन में दे दिया है। तो कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगम परम ब्रजे, भगवान श्री कृष्ण के नाम का हमेशा गाते रहना। अभी नाम में भी अंतर होता है। भगवान कृष्ण का नाम तो सब कोई जानता है और अनायास भी नाम ले लेते हैं, लेकिन लेने लेने में भी फर्क होता है। कोई किस प्रकार से नाम लेता है, कोई किस प्रकार से नाम लेता है, जैसी जैसी भावना होती है वैसे नाम की असर होती है। यानी कि भगवान का शुद्ध नाम हमारे मुख में से निकलता है। यदि हम किसी को अनुरोध करें कि भैया सोलह माला का जप करो, भगवान का नाम करो, अरे फुर्सत नहीं, आप लोगों को कुछ करना नहीं इसलिए करते रहते हैं, हमें क्यों पकड़ते हो, जान छोड़ो, देखो हमारा तो बहुत परिवार है, हम तुम्हारे जैसे थोड़े साधु जैसे बने बैठे हैं, हम भगवान का नाम लेने जाएंगे तो इनको खिलाएंगे कौन। लेकिन ये सब नासमझ है। भगवान के नाम की महत्ता में भगवान सर्वव्यापी है तो नाम भी सर्वव्यापी है। जब भगवान सर्वव्यापी होते हैं, हमारे काम में कोई दखल करते हैं तो भगवान का नाम भी सर्वव्यापी होकर अपने काम में कोई दखल करेगा तो फिर मूर्खता बताने की आवश्यकता क्या है। लेकिन कितनी श्रद्धा और कैसी श्रद्धा है, यदि श्रद्धा ही नहीं है तो गप्पे मारने की आवश्यकता क्या है। तो जब नाम के बाबत में पद्म पुराण क्या कहता है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वाम नाम नामिनो, भगवान और भगवान के नाम में भेद नहीं होता। जब नाम लेते भगवत प्राप्ति हो सकती है तो वो तो कितना आसान तरीका बताया गया, यह कहने की बात नहीं है, उसके पीछे हमें जरा समझदारी बनानी चाहिए। कभी सुना है राम से राम का नाम बड़ा होता है, वो कौन कहेगा, कैसे करेगा, कैसे सिद्ध करेगा, राम से बड़ा राम का नाम सुना है, है? तो कैसे सिद्ध होगा? रामचंद्र तो है ही नहीं, लेकिन राम का नाम है यहां। रामचंद्र जी व्यक्ति है, वो परम व्यक्ति है, यहां थोड़ी खड़ी है, लेकिन राम का नाम तो है ना। राम नाम सत्य है और राम नाम की विजय होती है। यानी कि भगवान रामचंद्र पहले आए, उसे उसका नाम ही उनको प्रकट करता है, अपने आप नहीं आएंगे। नाम की ऐसी सेवा करें वो प्रकट होते हैं। भक्त लोग जैसे पुकारते हैं तो भगवान आने ही चाहिए, लेकिन रामचंद्र जी का व्यक्तित्व का पता नहीं हमें कि वे कैसे हैं। फोटो में दिखाई देते हैं वैसे ही होने चाहिए क्या? हाँ, फोटो कोई कल्पना से थोड़ी बनाई है। शास्त्र में जैसे भगवान के स्वरूप का वर्णन होगा तभी तो बनाई है ना। तो शास्त्र माध्यम है, तो भगवान के नाम की महिमा का भी शास्त्र ही माध्यम है। हाँ, भगवान परम ब्रह्म कहलाते हैं, इनका स्वभाव ब्रह्म कहलाता है। और ब्रह्म के अंश आत्मा होती है, तो आत्मा भी ब्रह्म कहलाती है, लेकिन उसकी शुद्ध अवस्था यानी तो शब्द द्वारा प्राप्त होती है। हा? आप देखो कि बाइबल में भी कहा है, In the beginning there was the word and the word was God. सृष्टि की शुरुआत पहले सिर्फ शब्द था और शब्द भगवान था। ये बाइबल में भी लिखा गया। वो कहां से उठा के ले आए? अपने वेद में से। ओम तत्सित इति निर्देश ब्रह्मणस्थित। ओम तत् और सत, ये तीन शब्द की बात करते हैं। ओमकार, तो इन द बिगिनिंग देर वॉज ओम, तो शब्द ब्रह्मन यानी कि आध्यात्मिक तरंगे जिसमें से निकलती है। ये पवित्र नाम पवित्र क्यों कहलाता है? सबके नाम पवित्र होने चाहिए। भगवान का नाम अति पवित्र है, और जो नाम लेता है वो स्वयं पवित्र हो जाता है। तो जिसमें पवित्र करने की शक्ति है तो वो अभिन्न है। नाम का गुण पवित्र होता है। सूर्य का प्रकाश सारी जगह को पवित्र करता है, वो खुद अपवित्र नहीं बनता। यदि पेशाब खाने पे भी सूर्य का प्रकाश पड़े तो दुर्गंध को भी हटा सकता है। हा? लेकिन इसलिए क्या, ओ वहां क्यों गिरा प्रकाश, वो दूषित हो गया? नहीं, भगवान पूर्ण पवित्र होते हैं, भगवान का नाम भी पूर्ण पवित्र होता है, तो वो कभी दूषित नहीं होता। ऐसा उदाहरण हमें मिलता है उपदेशों में कि हनुमान जी राम भगत, भगवान का राम का नाम बहुत श्रद्धापूर्वक निष्ठापूर्वक लेते थे और बहुत सारी सावधानी से इतना स्मरण बनाए रखते थे। तो एक बार कोई व्यक्ति टट्टी जा रहा था, तो टट्टी खाने में वो भगवान का नाम ले रहा था, तो हनुमान जी को गुस्सा आया, एक लगा दी उसको एक कि अपवित्र स्थान में भगवान का नाम लेता। तो वहां से हनुमान जी निकले उनको मारकर, एक थापड़ लगा दी, चुप रहे, कम से कम ना धोके तो कर। तो भगवान रामचंद्र जी से मिले तो रामचंद्र जी को कुछ दुख हो रहा था, मुंह सूजा हुआ था, लेकिन भगवान आपको क्या हो गया आज, करे क्या, किसी ने मुझे मारा, एक लगा दी। तो हनुमान जी को तुरंत पता चल गया कि क्या है, राम नाम और रामचंद्र जी में अभेद है, उनके पांव में गिर गए हैं, प्रभु हमें क्षमा करो, हमें किसी ने कोई टट्टी खाने में आपका नाम लेता था, हमें गुस्सा आ गया, मार दिए। तो भगवान राम का नाम, भगवान कृष्ण का नाम पूर्ण पवित्र होता है, पूर्ण शुद्ध और नित्य मुक्त और स्वतंत्र होता है, और किसी मनुष्य ने बनाया नहीं है। जैसा व्यक्तित्व का चरित्र होता है उसके द्वारा ही नाम पड़ता है। तो ये सारी हकीकत शास्त्र द्वारा समझने का प्रयत्न करना पड़ता है। नाम आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिकता में ये भौतिक तीन गुणों समावेश होते ही नहीं। और भगवान कृष्ण का नाम बहुत अच्छा लगता है, ये कोई सात्विक भाव से बोल रहा है, ये अच्छा लगने का कोई इरादा नहीं होना चाहिए। भगवान का नाम अति पवित्र है, यदि हमें आकर्षित करता है, क्योंकि कृष्ण भगवान सब आकर्षक, यानी कि जो नाम का अर्थ है वो तादृश व्यक्ति मूर्तिमंत होना चाहिए, सर्वाकर्षक को कृष्ण कहते हैं। तो जो सर्वाकर्षण जो गुण है वो नाम में आता है, इसीलिए नाम हमें आकर्षित करता है। राम यानी कि सर्वानंद, आनंददायक, राम का नाम लेते आनंद की झलक तुरंत उपस्थित होती है। लेकिन यदि हमारे दिल में पत्थर जैसा होता है, ना समझ रहती, अज्ञानता पड़ी रहती है, तो आनंद के बजाय ये क्या कर रहा है, अपना अहंकार आगे बढ़ाता है। इसलिए हमें न तो नाम लेने में रुचि लगती है न कुछ। तो नाम की महिमा आध्यात्मिकता से सिद्ध होती है, भौतिकता से तो कुछ भी सिद्ध नहीं होता। नाम सिद्ध करने के लिए क्यों जाओ, भौतिकता से यानी कि सत्व रज और तमोगुण से हमें क्या सिद्ध करने को मिलता है, कुछ नहीं। हम सुख की झंखना करते हैं लेकिन मिलता है दुख। सुख की कल्पना बताई गई है, सुख सिर्फ कल्पना बराबर है, हम उसके लिए तलसते रहे वो मूर्खता है। भागवत ने कहा है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते कहते हैं, बिना बुलाए दुख आता है, तो बिना बुलाए सुख नहीं आएगा। सुख और दुख दोनों ये भौतिक अवस्था में प्राप्त होते हैं, लेकिन बिना बुलाए दुख आता है उसका हमें अनुभव है, लेकिन हमें बिना बुलाए सुख आएगा इसी तरह उसके लिए भरोसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम स्वार्थी हैं, लालची हैं, हमने ये स्वार्थ में मति गंवा दी है और भगवान पर श्रद्धा छोड़ दी है, भगवान पर आवश्यक श्रद्धा रखते ही नहीं, इसलिए हमें भगवान से ज्यादा भरोसा न करके सुख मिलेगा इसकी राह भी देखते हैं। हमें अत्यंत इमीडिएट सुख की अपेक्षा रहती, इसीलिए ए भगवान आपकी एनर्जी हमें उधार दे दो, हम अपना सुख बना लेंगे, इसलिए हम मेहनत करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये मेहनत कितनी सफल होती है, कुछ नहीं। जितनी मेहनत करें उतना यदि फल मिलता है तो उतना खर्चा भी हो जाता है, यानी कि खाली के खाली बैंक्रप्सी बुला देते हैं। कोई समझता है कि मैं पुण्य करूं, भगवान के काम हूं, मैं सद्गुणी बनूं, सद्व्यवहार करूं, नीति नियम इत्यादि पालन करूं, थोड़ा व्रत तप इत्यादि रखूं, सब सात्विक भाव से करूं, लेकिन उससे भी क्या लाभ, थोड़ा काम चलाओ लाभ होता है, लेकिन वो भी छोड़ के जाना होता है। मन तो अतृप्त ही रहता है, हृदय में भगवान की जब तक भावना पैदा नहीं होती बिल्कुल संतोष होता नहीं। इसीलिए भगवान का नाम हृदय पूर्वक लेना चाहिए, हृदय में, क्योंकि आत्मा हृदय में बैठी है और भगवान भी हृदय में बैठे हैं, तो कम से कम दोनों बीच का शब्द द्वारा भी तो व्यवहार होना चाहिए। इसलिए हरे कृष्णा महामंत्र में तीन बीज शब्द दिए हैं, हरा, कृष्ण और राम। हरा 8 बार आता है, हरा का मतलब है भगवान की अंतरंग शक्ति, जो लादिनी शक्ति राधा रानी है, इनको पुकारने से हरे बनता है। राम और कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सर्व आकर्षक सर्व आनंददायक चरित्र बताता, इनकी सेवा करने के लिए राधा रानी बहुत कुशल है, तो हमें प्रार्थना के रूप में ये मंत्र लेना पड़ता है कि हे माता, तू जैसी भगवान की सेवा करती है हमें सिखा। तो बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। इस पुरुषोत्तम मास में इनके अलावा हम दूसरा कोई संदेश नहीं देते, क्योंकि दूसरा संदेश निष्फल होगा, अपशुकन लाएगा। बेहतर है यही स्वीकार है और आपका जीवन धन्य बनाए। हरि बोल। किसी को कोई प्रश्न है?